मेरे उदयमान युवा साथियों नमस्कार। आज 17 मई 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं महेंद्र कुमार कौशिक, आप मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं। पूजा कुमारी केशरी, आप रांची झारखंड से हैं। आशुतोष कुमार पांडे, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। और शिवम कुमार पांडे, आप भी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो महेंद्र, पूजा, आशुतोष और शिवम, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बात स्वीकार करना चाहूंगा कि मैंने उद्बोधन में आज कहा है मेरे उदीयमान युवा साथियों। इनफैक्ट ये कहा मैंने जरूर है, लेकिन यह मेरा उद्बोधन नहीं है। आप में से ही एक प्रिय श्रोता के द्वारा मुझे यह उद्बोधन सुझाया गया था और मुझे चूंकि यह उद्बोधन बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा, तो मैंने उनसे उधार ये ले लिया है और उद्बोधित आपको किया है। और मुझे लगता है कि उधार चुकाने का एक ही फिर तरीका मेरे पास बच जाता है और वह यह है कि मैं आपको उन प्रिय श्रोता का नाम बता दूं जिन्होंने ईमेल के जरिए मुझे यह उद्बोधन के लिए कहा। उनका नाम है प्रतिभा कल्याण, जो हमारी सिक्स्थ बैच की स्टूडेंट रही हुई है। इन्होंने एक छोटा सा मेल भी लिखा है, तो मैं समझता हूं कि मुझे आज थोड़ी सी मेल में आखिरी में पढ़ता हूं, तो आइए थोड़ी सी शुरुआत में ही कर देता हूं। इससे आप लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा कि मित्रों, जो यहां 15 दिन की क्लासेज होती हैं, इनफैक्ट उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेल भी आते हैं और दूसरे स्टूडेंट के मन में भी ये शंका रहती है कि भी 15 दिन में कैसे कोई सिविल सर्विस की तैयारी करा सकता है या हो सकती है, 15 दिन में क्या फायदा होगा, क्या ऐसा चमत्कार हो जाएगा। देखिए, चमत्कार जैसा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, फायदा जरूर होता है। अगर आपको 15 दिन में एक ऐसी टॉर्च मिल जाती है, आपके हाथ में थमा दी जाती है कि आप उस टॉर्च से फिर आगे के रास्ते को देख सकते हैं, तो चलना तो आपको ही होगा, चलना तो कोई आपको आपके बिहाव पर तो कोई चल नहीं सकता है। हाँ, आपको चलना बताया जा सकता है कि ऐसे ऐसे चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि 15 दिन की क्लासेस में हम लोग यह करने में सक्षम रहते हैं। मेरे पास रोज इस संदर्भ में मेल आते हैं, लेकिन आज चूंकि प्रतिभा कल्याणन ने एक अच्छा उद्बोधन दिया था, तो मैं उनके मेल को पढ़कर आपको सुना रहा हूं। मैं ज्यों के त्यों उनके शब्द आपके सामने रख रहा हूं। सर, मैं प्रतिभा कल्याणा सिक्स्थ बैच की स्टूडेंट हूं। सर, अभी कुछ समय पहले आपने श्री गंगानगर के लखासर गांव के बारे में अपने डेली ऑडियो में बताया था, जिसमें श्री गंगानगर वासियों व वहां के विद्यार्थियों के प्रति आपका स्नेह देखकर बहुत अच्छा लगा। सर, 15 दिन की क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद अब एनालिसिस पावर पहले से काफी बढ़ गई है। अब न्यूज़पेपर आर्टिकल व मैगजीन्स के आर्टिकल पहले से कहीं अधिक अच्छे से समझ में आते हैं। सर, आप हम विद्यार्थियों को किसी नए नाम से संबोधित करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें मेरे उदीयमान युवा साथियों के नाम से संबोधित करें। हम सबके प्रति आपके स्नेह व समर्पण के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। प्रतिभा कल्याणा बैच सिक्स। तो प्रतिभा, मैं भी आप सब आपके माध्यम से अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और निश्चित रूप से प्रार्थना काम करती है और आप लोगों की प्रार्थना मेरे लिए काम करेगी और मेरी भी प्रार्थना आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत आपके शब्दों के लिए धन्यवाद और आभार। तो मित्रों, आइए अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। कल के आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार को अगर मैं मिलाकर बात करूं, तो मित्रों दो तीन खबरें हमारे सामने हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर है वो भारत फिलिस्तीन समझौते को लेकर है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी सी बात आपसे डिटेल में करूंगा। दूसरी खबर आपने छापे की पढ़ी है ना, कि हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं चिदंबरम जी, उनके निवास पर, उनके बेटे के निवास पर छापे मारे गए और एक और छापा मारा गया लालू यादव जी के यहां, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी रेल मंत्री और विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके बारे में अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो आपने, आपको याद होगा कि, याद तो होगा ही क्योंकि कल की बात है, एनके सिंह जी को बुलाया गया था, है ना। एनके सिंह बहुत ही सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, वो अच्छे वेल रोड रेड पर्सन है। उन्होंने एक नई बात बताई। देखिए मित्रों, सिविल सर्विस की सफलता का जो रहस्य है वो यही है कि हम कैसे दूसरों से हटकर कुछ बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि एकदम तो हटकर हम क्या लिखेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ झलक उसकी मिल जाती है। इन छापों के बारे में ही जब उनसे सवाल किए, प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा। उन्होंने मेरे मित्रों कहा कि सन 1970 से पहले का जो भ्रष्टाचार था वो होता क्या था कि इंडिविजुअल भ्रष्टाचार होते रहते थे। जैसे कि कोई अफसर है, पुलिस वाला है, उसने कोई धमकी दे दी, कुछ और कर दिया या किसी मामले में पकड़ लिया, तो सामने वाले ने कहा कि भैया मुझसे 3,000 रुपए ले लो, या उसने 3,000 रुपए की मांग की कि दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ये सब करप्शन इस तरह के चलते रहते थे। उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मित्रों, कि 1970 के बाद करप्शन के चरित्र में एक बहुत जबरदस्त बदलाव आया, और वो बदलाव इस रूप में आया कि जब सरकार सामाजिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने लगी, वेलफेयर स्टेट के को अंजाम देने लगी, क्योंकि अब आजादी 47 में हमें मिली थी, इन बात के 70 तक आते आते, यानी कह लीजिए कि लगभग 20-25 सालों में हम थोड़े से मजबूत हो गए, थोड़ी सी हमारी नींव ठीक ठाक हो गई, तो सरकार ने सोचा कि अब सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो जब सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनने लगी तो फंड बहुत ज्यादा आने लगे, यहां बांध बनाया जाना है, यहां स्कूल बनाया जाना है, यहां अस्पताल खोला जाना है, तो सरकार के तरफ से फंड्स बहुत ज्यादा दिए जाने लगे। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को फंड पहुंचने लगा, और जब ये फंड आया तो एक कार्टेल सा बना, एक गुट बना, जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म जैसा नाम दे देते हैं। ये गुट किसके अंतर्गत बना, वो एक, जब फंड आ रहा है तो राजनेता की भी निगाह उस पर पड़ी कि यार ये तो इतना पैसा आ रहा है तो हम क्यों चुप बैठे, फिर अफसर कि हमारे माध्यम से ये पैसा दिया जाएगा पब्लिक को तो हम क्यों चुप बैठे, तो एक राजनेता हो गया, एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो गए, और तीसरा हो गया जो उन फंडों को जमीन पर उतारेगा, यानी कि ठेकेदार जैसे लोग हो गए, मतलब बिजनेस हो गए, ठेकेदार लोग हो गए। तो इनका बड़ा अच्छा एक समूह बन गया और सामूहिक भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप हमारे सामने आया, सामूहिक भ्रष्टाचार। एनके सिंह जी ने जो बताया कि ये जो छापे हैं, खासकर जो अभी पड़े हैं, ये राजनेताओं के यहां पड़े हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स के यहां पड़े हैं। मतलब लालू यादव जी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता हैं, चिदंबरम जी बहुत सुलझे हुए बड़े एकेडमिक राजनेता हैं, बहुत लंबा उनके पास केंद्रीय मंत्री का अनुभव है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों का अनुभव है, तो ये छोटे मोटे राजनेता नहीं है। आमतौर पर होता क्या है कि जैसे सरकार बदल गई, दूसरे पार्टी की सरकार आ गई, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप इससे पहले नहीं पाएंगे कि इतने बड़े बड़े नेताओं के यहां छापे मारे जाएं। हाँ, उनको पकड़ करके जेल डाल देंगे, कुछ और कर देंगे, उनके विरुद्ध केस चला देंगे, वो सब तो होते रहते हैं, लेकिन उनके यहां छापे मारे जाए ये सामान्यतया देखने को नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इससे पहले, इस रिजीम से पहले, मतलब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल से पहले होता यह था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि भाई ठीक है तुम सत्ता में आओगे तो तुम सत्ता चलाना, हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम सत्ता चलाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे के यहां छापेमारी नहीं करेंगे। तुम जब सत्ता में हो तो उसका फायदा तुम उठा लो, जब हम सत्ता में रहेंगे तो उसका फायदा हम उठा लेंगे, तो तुम हमें उठाने दो, हम तुम्हें उठाने देंगे, छापामारी नहीं करेंगे, सत्ता ठीक है बदलती रहेगी। बोले वो अब नहीं रही, जो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इसे बहुत बड़ा कदम बताया है, राष्ट्रीय हित में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। तो दोस्तों इसे थोड़ा आप इस नजरिए से देखिएगा। मित्रों, इसके बाद एक छोटी सी और खबर थी कि विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन के बाद एक आंकड़ा आया है कि इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है और 91 लाख लोग, मतलब लगभग 1 करोड़ ही समझ लीजिए, नए इनकम टैक्स एचसी इसमें ऐड हुए हैं। 91 लाख यानी कि 1 करोड़ लोग हो गए। मित्रों आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, माफ कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 करोड़ लोग और विमुद्रीकरण के बाद इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, उस लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो ये एक विमुद्रीकरण का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आता हूं भारत इजराइल संबंध को लेकर। देखिए जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ भारत के संबंधों को लेकर के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में तो सबसे अधिक प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं। जहां तक प्री का सवाल है तो वहां फिलिस्तीनी और इजराइल जैसे देश भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुद्दा ऐसा बनता है कि भारत और फिलिस्तीनी या भारत और इजराइल के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं तो वह भी मेंस का टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, संख्या की दृष्टि से नहीं अपनी उपस्थिति की दृष्टि से। जब मित्रों मैं उपस्थिति की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब एटलस खोल लें या नक्शे के सामने खड़े हों और जाकर लोकेट करें कि ये जो फिलिस्तीनी है ये है कहां। फिलिस्तीन और इसराइल, सच पूछे तो दोनों का नाम एक साथ ही लगभग लगभग लिया जाता है, दोनों बिल्कुल आसपास ही हैं। आपको सबसे पहले तो इसको लोकेट करना चाहिए कि ये है कहां पर। तो आपको ये एक जगह पर दिखाई दे जाएगा कि वो कहां पर है। अब मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको बताऊं या आपको नहीं बताऊं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, आप चले जाइए तो आपको पश्चिम एशिया में वो दिखाई दे जाएगा। न्यूज में आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो पश्चिम एशिया की जो समस्या है वो सतत बातचीत के जरिए हल की जा सकती है, सतत बातचीत के जरिए जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स है। इसराइल और फिलिस्तीनी लंबे समय से विवाद में हैं, इनमें लगातार झगड़ा चलता रहता है। कभी गाजा पट्टी को लेकर के आप सुनेंगे, कभी कोई और इस तरह के आप झगड़े सुनते रहेंगे। और सच पूछिए तो फिलिस्तीनी और इसराइल को लेकर की समस्या केवल इन दो देशों के बीच में नहीं है, बल्कि विश्व समस्या का भी रूप ले चुकी है। विश्व समस्या का रूप यह है कि कुछ देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को, देखिए इसराइल तो अपने आप में फुल फ्लेज्ड कंट्री है और उसकी अपनी सत्ता है, जो संकट है वो फिलिस्तीन के सामने संकट है, क्योंकि 1967 में इसराइल ने फिलिस्तीनी पर कब्जा कर लिया था। ये जो फिलिस्तीनी है, जो इसराइल है, पहले एक थे। 1900 भारत जब आजाद हुआ है उसी के आसपास ये भी आजाद हुए हैं। यहां फ्रांस और इंग्लैंड का शासन था, जैसे हमारे यहां भी देखिए इंग्लैंड और फ्रांस का शासन था। जब मैं कह रहा हूं कि फ्रांस का शासन था तो आप थोड़ा सा चौंकेंगे, यस पांडिचेरी में फ्रांस ही था हमारे, और हमारे गोवा में पुर्तगाल था। तो ये सब आज वो सब के सब हमारे देश के हिस्से हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का ही शासन नहीं था हमारे यहां, पुर्तगाल का भी शासन था और फ्रांस का भी शासन था। तो बाद में फिर ये आजाद हो गए मित्रों, और जब आजाद दोनों देश हुए 1948 में ये आजाद हुए और इसराइल राज्य की स्थापना हुई। बाद में फिर फिलिस्तीनी ने एक वहां एक पार्टी बनी जिसका नाम है, ये आपको पढ़ने में अक्सर मिलेगा, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको सुनने को मिलेगा, PLO, इसका शॉर्ट फॉर्म है PLO। फिलिस्तीनी जो है ना वो PH से है, F से नहीं है, याद रखिएगा PLO। और भारत वो देश रहा है जिसने PLO को बकायदे फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधि संगठन माना। आप अक्सर यासिर अराफात के जी के बारे में पढ़ेंगे, जो फिलिस्तीनी आजादी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और मिसेस गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मिसेस गांधी को सिस्टर कहा करते थे, और बिल्कुल वो एक फौजी वेश में रहते थे, लंबी दाढ़ी बढ़ा करके और खाकी कलर की ड्रेस पहने हुए, बिल्कुल फर्स्ट, मतलब बहुत स्मार्ट व्यक्ति थे यासिर अराफात। भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। भारत ने हमेशा दोस्तों फिलिस्तीन को बस सपोर्ट किया। आपको मालूम है कि जब नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बने, यानी कि देश के आजाद होने के बाद ही, हमारे विदेश नीति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है कि जो देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे भारत उनका सपोर्ट करेगा। तो हमने अफ्रीका के बहुत से देशों को भी सपोर्ट किया, फिलिस्तीनी को भी बहुत से देशों से को सपोर्ट किया। अब संकट यह हुआ कि चूंकि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे तो इसराइल के साथ भारत के संबंध खराब होते चले गए। बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसराइल को यह बात नागवार नहीं गुजरी कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करें। तो बाद में जब दूसरी सरकारें आई मिसेस गांधी के बाद, तो थोड़ा सा फिलिस्तीन से हम लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि 1975 में दिल्ली में पीएलओ ने अपना ऑफिस खोला और 1996 में भारत ने गाजा में अपना ऑफिस खोला, जो फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर है। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर है गाजा। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि थी, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व, यूं कह लीजिए कि विश्व राजनीति की भी दृष्टि से, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात इस पर की जानी चाहिए। एक दो बात आपको और बता दूं इसमें कि ये जो फिलिस्तीन है, पूर्वी जेरूसलम इसकी राजधानी है। मैंने अभी गाजा का नाम लिया, गाजा इसका सबसे बड़ा शहर है। भाषा यहां की अरबी है और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। मित्रों, बहुत छोटा सा देश है, आप कल्पना करके देखिए कि जो टोटल उसका वर्ग क्षेत्रफल ही है वो 2400 स्क्वायर किलोमीटर है। 2400 स्क्वायर किलोमीटर सोच करके देखिए, यानी कि अगर 60 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा हो तो वो देश पूरा हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन भी जो है 45.5 लाख है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, डेंसिटी डेफिनेटली 600-700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की डेंसिटी आपको डेंसिटी इसकी मिलेगी, डेंसिटी काफी है। मित्रों, कुल मिलाकर के यही जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, और मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि में आपको भारत और इसराइल, भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, बहुत सी क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिपिंग है देवेंद्र शर्मा जी का, जो कृषि विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आप लोगों को जनरली उनके आर्टिकल प्रोवाइड करता ही करता हूं। दोस्तों, उनके आर्टिकल पर बात करने के लिए अब वक्त नहीं बचा है। आर्टिकल भी उनका हिंदी में छपा है जो मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूं। एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि इस आर्टिकल के आखिरी आखिरी में जाने के बाद, आखिरी के जो दो पैरा हैं उसमें उन्होंने अपने कुछ ओपिनियंस दिए हैं कि हमारी जो मंडियां हैं उन मंडियों में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, खासकर कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। उसके यूं कह लीजिए कि उसकी जो मार्केटिंग है उस सेक्टर पर क्या सुधार किए जाने चाहिए, और वो बहुत अच्छे सुधार उन्होंने सुझाए हैं, बहुत ही नोबेल, मतलब बिल्कुल नए किस्म के सुधार हैं और बहुत ही व्यापारिक भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें पॉइंट वाइज अलग से नोट जरूर कर लें, क्योंकि कृषि क्षेत्र की बात है और ये आपके सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी दूसरे बहुत से क्लिपिंग्स हैं फ्रेंड्स, अपनी जरूरत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मित्रों, तो अब मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दूं। कुछ स्टूडेंट ने जानना चाहा है कि सर, जब हम क्लासेस में आएंगे तो हॉस्टल की व्यवस्था क्या होगी। आप वेबसाइट पर जाइए, देखिए उसमें बकायदे लिखा हुआ है कि जब पूरी की पूरी फीस आ जाएगी, उसके बकायदे डेट डिक्लेयर होती है, तो आपसे हॉस्टल के लिए आपसे बकायदे ऑप्शन मांगा जाएगा। अगर आप अपना इंतजाम खुद करा सकते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि आप चाहेंगे कि आपके बिहाफ पर एकेडमी करा दे तो आपके बिहाफ पर एकेडमी उसका इंतजाम करा देगी। उसकी फीस अलग से होती है जो रिजनेबल होती है कंपैरेटिवली। तो दोस्तों, हॉस्टल की उस तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी जानती है कि वहां से आने वाले स्टूडेंट और वो भी इतनी बड़ी संख्या में कहां रहने की व्यवस्था करेंगे, कहां ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप कोई अपनी तरफ से करना चाहता है, आप बहुत लोगों के परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। मित्रों, स्टूडेंट ने आईएएस कैसे बनेंगे भाग दो के इंग्लिश वर्जन के बारे में जानना चाहा है कि अभी मैं इसके बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इसका इंग्लिश वर्जन का क्या होगा। मित्रों, ये भी पूछा गया है कि उन्हें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नेशनल न्यूज़पेपर, मुझे नहीं मालूम है कि आप कहां रहते हैं और वहां कौन से न्यूज़पेपर्स आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हों, बहुत लोकल अखबार नहीं, जो आएंगे वही पेपर आप पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ भी नाम लेकर बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप देखें कि क्या अवेलेबल वहां हो सकता है। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। ब्रह्मदीन वर्मा, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। प्रीति बंसोड़, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। संतोष कुमार, बहराइच उत्तर प्रदेश से। रंजीत सिंह, प्रहलाद कुमार सोनी, मालती यादव, कुमारी जया बिहार से। उत्कर्ष दीप, पटना बिहार से। किशन मेवाड़ा, पालिताना गुजरात से, आदित्य राणा, इरफान सैफी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, सिमरन कौर, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से और मन्यू राय न्यू दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।